ओम शांति। मधुबन की पावन भूमि में आज विशेष सबको मौका मिला है तपस्या करने का। इस भूमि में जहाँ स्वयं साक्षात भगवान आते हैं और उनका बेहद का कार्य जहाँ चलता है, वहाँ याद में रहना सहज हो जाता है। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था कि मधुबन का महत्व जो समझते हैं, मधुबन की दिनचर्या का महत्व जो रखते हैं, वे अपने को बहुत ही सहज और स्वतः योगी बना सकते हैं। और अब जबकि हम बाबा के बच्चों के पास ज्ञान की पूरी ही गहराई आ चुकी है, क्योंकि प्यारे बाबा ने आदि मध्य अंत के आलोक और परलोक के सभी राज हम बच्चों को समझा दिए हैं, तो हम बच्चों की बुद्धि में भी ज्ञान का पूरा ही विस्तार और हर प्रकार की गहराई आ गई है। तो अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुख्य पुरुषार्थ यही रहता है कि अब हमारा मन बाबा की याद में मग्न हो जाए। भक्ति में भी लोग मानते हैं कि कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मन परमात्मा में लगाना यही महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति के पास हजारों शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन मन परमात्मा में एकाग्र न होता हो, तो उस विद्वत्ता का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे हम अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि हमने ज्ञान के इतने विस्तार को प्राप्त किया, इतनी गहराई को हमने समझा, दूसरों को भी हम समझा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा मन बाबा की याद में मग्न हो जाए और उस दृष्टि से यही लगता है कि हमें विशेष अंतर्मुखी बनकर अब अभ्यास करने की ज्यादा आवश्यकता है। दो बात गीता शास्त्र में भी कही है, सब कुछ समझाने के बाद भी जब अर्जुन ये कहता है कि हे भगवान, आपने हर प्रकार की बात मुझे समझाई है, लेकिन अभी भी मेरा मन आपकी याद में एकाग्र नहीं होता है, तो गीता में भी भगवान वाच यही दो बात अर्जुन को बताई गई कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन मेरे में लगता जाएगा। तो हमें भी ये दो बातें अपने आप में चेक करनी हैं कि सचमुच हमें अंदर से सच्चा वैराग्य है। इस दुनिया से हमारा बुद्धि का लंगर क्या उठ चुका है? तो जितना अंदरूनी वैराग्य होगा उतना त्याग सहज होता है, देह देह संबंध देह की इस दुनिया का जो त्याग हमें करना है वो सहज हो सकता है। अगर अंदरूनी वैराग्य नहीं है तो त्याग सहज नहीं हो सकता, और त्याग से तपस्या पावरफुल बनती। हम देह संबंधों में, भौतिक सुखों में रचते भी रहे और बाबा को याद करना भी चाहे तो ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, साकार मुरली में, आप सबको याद होगा, बाबा ने कहा था कि तुम बच्चे कदम कदम पर बाप की राय लेते रहो, भल तुम अपना धंधा धोरी करो लेकिन फिर भी उसके बारे में भी बाबा से राय लो, क्योंकि बाबा जब देखेगा कि बच्चा बहुत धंधे धोरी में फंस गया है तो बाबा फिर अटेंशन खिंचवाएंगे और कहेंगे कि पेट को तो दो रोटी चाहिए, फिर तुम इतना माथा क्यों मारते। कल कहा था ना बाबा ने, याद है सबको, और उसमें बाबा ने ये महावाक्य कहा था कि बच्चे तुम्हें जो सांसारिक और भौतिक कामनाएं हैं वो छोड़ देनी चाहिए। अगर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें अपनी भौतिक और सांसारिक कामनाओं को सीमित करना चाहिए। इसलिए हम दैहिक सुखों को, देह धर्मों को भोगते भी रहे और बाबा को याद करना भी चाहे तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। इसलिए वो त्याग करना अर्थात वहां से आसक्ति मिटाना, मन को उपराम करना, जो है दुनियावी रूप से संबंध की रीति से या साधन की रीति से उनके प्रति अब हमारा निमित मात्र का भाव रहे और हमारा दिल से सर्वस्व का भाव बाबा के प्रति रहे, तभी हमारा योग सहज हो सकता है। इसलिए बेहद का वैराग्य, बेहद का वैराग्य बाबा इस अर्थ में कहते हैं कि कुछ समय के लिए कुछ कारणों से, कुछ व्यक्तियों से हमें कभी कभी वैराग्य आता है। जब कभी हम आपस में टकराते हैं, दुख खाते हैं, धोखा खाते हैं, कोई बात से अनबन हो जाती है तो हमारा मन वहां से हटने लगता है, लेकिन वास्तव में वो वैराग्य नहीं है। कहा जाता है कि दुख से संसार का त्याग नहीं हो सकता है, संसार का त्याग समझ से हो सकता है, क्योंकि अगर सुख मिलेगा तो फिर से वो मन संसार के प्रति अट्रैक्ट होगा। इसलिए हमें समझ पूर्वक अपने आप में वैराग्य लाना है। और वो कौन सी समझ अपने आप को हमें समझानी है जो बाबा हमें रोज समझाते रहते हैं कि ये समय कौन सा है। और बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं और हमने कौन सा लक्ष्य लेकर इस ज्ञान और योग के मार्ग को जीवन के लिए अपनाया था, ये सारी बातें हम मन ही मन सोचें, रियलाइज करें और उसके सामने हमें कौन मिला है, क्या क्या मिला है और कितने ऊंचे कार्य के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, उस रियलाइजेशन में अगर हम अपने आप को रखते हैं तो हमें दुनिया की कोई भी बात आकर्षित नहीं कर सकती है, ना हमारी बुद्धि वहां डूब सकती है और ना ही हमारी आंखें वहां डूबेगी। मैं दुनिया की बात जो कह रही हूँ वो केवल कलियुगी दुनिया या लौकिक दुनिया की बात नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे जिस अलौकिक संसार में हैं, जिस अलौकिक परिवार में हैं, जिस अलौकिक सेवा के कार्य में हैं, वहां भी हमें अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी रखनी, क्योंकि मन का स्वभाव, आत्मा का नेचर कहीं भी अटैच होने का, इसलिए ज्ञान मिलते ही दुनिया से हम डिटैच हो गए और इस ब्राह्मण परिवार में आ गए। लौकिक दुनियावी अनावश्यक प्रवृत्तियों से हम निकल गए और सेवा की प्रवृत्ति में आकर के जुड़ गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हम यहाँ अटैच होने लगे, क्योंकि जिसके संसर्ग में दिन रात हम आते हैं वहां धीरे धीरे मन घर बनाने लगता है। इसलिए हमें यहाँ भी सावधान रहना है कि मैं जहाँ हूँ, जिस स्थान पर हूँ, जिस सेवा के लिए हूँ और जिसके साथ मैं हूँ, मुझे उन सबके बीच में रहते हुए भी न्यारा रहना, क्योंकि फाइनली मुझे अटैच केवल एक बाबा के साथ होना। तो ये अगर हम अपने आप में पाठ पक्का करते रहते हैं तो हम इस परिवार के अंदर भी न्यारा रह सकते हैं और निमित्त जिम्मेवार बनके चाहे कितना भी सेवा का कारोबार हम करेंगे लेकिन उसमें भी हम होल्ड करने नहीं लगेंगे, उसको पकड़ने नहीं लगेंगे। तो ये है अंदर का वैराग्य जो बाबा ने कल भी मुरली में कहा था कि आत्मा को ये धुन लग जाए, नई दुनिया में जाना है, वापस घर जाना है, बाबा के पास जाना है, बाबा आया है लेने के लिए, बाबा को याद करते करते बाबा के पास पहुंच जाना है। कल कितनी बार बाबा ने मुरली में ये सारी बातें हम बच्चों को याद कराई थी और कितना सहज उपाय हम बच्चों को बताया था कि शिव बाबा के साथ अगर हमारी सच्ची मोहब्बत है तो बाबा हमें अपने साथ घर ले जाएंगे। एक प्यार, एक बाबा से सच्ची मोहब्बत आवश्यक है जो हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचा देगी। तो तो बाबा से जितना प्यार होता है उतना स्वाभाविक हम और बातों से न्यारे होते जाते हैं। तो वो है बेहद का वैराग्य। और दूसरी बात जो कही है कि अभ्यास, प्रैक्टिस, क्योंकि मन को एजुकेट करना जरूरी है। आज मैं कहूं कि मुझे बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे शांति से बैठकर बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं है, तो उससे प्यार नहीं कहा जाएगा, है ना? अगर प्यार है तो हमें बाबा के लिए समय भी देना चाहिए। बहुत प्यार है लेकिन हम कुछ समय निकाल कर बैठ कर शांति से अभ्यास ही नहीं करते हैं, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कैसे कर सकेंगे? इसलिए एक है क्वांटिटी ऑफ योग, काफी समय तक का योग, लंबे समय का अभ्यास हमें बहुत जरूरी। कई बार हम सिर्फ 2 मिनट आते हैं, योग करते हैं और चले जाते हैं। बेशक ये हमारा प्यार है, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य है योगी बनना, तो हमें विशेष समय निकाल कर अभ्यास करना ये बहुत जरूरी। इसलिए क्वांटिटी ऑफ योग और उसके साथ क्वालिटी ऑफ योग ये भी जरूरी है कि जब भी हम अभ्यास करने बैठे तो दिल से अभ्यास कर, सिर्फ निमित्त मात्र नहीं बैठे, प्रोग्राम के हिसाब से नहीं बैठे, सब बैठे हैं इसलिए नहीं बैठे, नियम बनाया है इसलिए नहीं बैठे, लेकिन जब बैठ ही रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंस हम समझ ही रहे हैं कि हमें बैठना चाहिए, तो क्यों नहीं हम दिल से बैठ और सब तरफ से अपने आप को समेट कर और अपने मन को पूरा प्रिपेयर करके बाबा के प्यार से भर के क्यों नहीं हम बैठे? तो जितना हम अभ्यास करते हैं हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है, मन अभ्यस्त हो जाता है सेकंड में समेटने के लिए। तो उस हिसाब से दादी जी ने आज हम सबको ये मौका दिया है कि हम विशेष आज अपने आप से बैठें और बाबा के साथ बैठें। आपस में मिलना, मधुबन देखना, ये सब हम हर बार करते हैं और वो जरूरी भी है, उसका अपना आनंद है, लेकिन सबसे न्यारा होकर अपने आप में बैठना उसका आनंद भी अपना ही है और वो आज हमें अनुभव करना है। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी भाई बहने आज मानसिक रूप से तैयार होकर बैठे हैं कि हमें अब मन से कहीं और नहीं जाना है, मुझे अपने स्वरूप में रहना है और बाबा से दिल की बातें करनी। कहीं हमारे जीवन का ऐसा नहीं हो जाना चाहिए जैसे लौकिक में होता है कि नए नए जब शादी करते हैं तो पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम रखते हैं, आपस में ही बैठते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी गृहस्थी बढ़ती जाती है, उनका काफी समय उनके बच्चों और गृहस्थी के प्रति चला जाता है, बहुत कम समय उन दोनों को बैठकर बात करने का मिलता है। तो हम बच्चों का भी कभी कभी ऐसा होता है, शुरू में तो हम एक बाबा की लगन से ही बाबा के बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सेवा करते हैं, आप समान बनाते हैं, ब्राह्मण परिवार बढ़ता है, सेवा की जिम्मेवारियां लेते हैं, तो फिर हमारा बाबा से कम हो जाता है और बाबा के बच्चों से ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये लक्ष्य हमें सदा पक्के करते रहना है कि मुझे इस अलौकिक जीवन में गृहस्थी नहीं बनना है। वो गृहस्थी सेवा की हो, ब्राह्मण परिवार की हो या लौकिक हो, लेकिन मेरा लक्ष्य योगी बनने का है। इसलिए इन सब में रहते हुए भी मुझे वो समय जरूर निकालना है जो मैं शांति से बाबा के साथ बैठकर प्यार से बात कर सकूं। और ये आप सबका अनुभव होगा कि जब हम सचमुच शांति से बैठते हैं और बाबा के पास जाते हैं, तो आत्मा आनंद स्वरूप होकर बाबा के पास से लौटती है। वो याद हमें रिफ्रेश कर देती है, एनर्जेटिक बना देती है। इसलिए अपने को सब तरफ से समेट कर बैठना और दिल के सच्चे प्यार से बाबा के साथ बात करना, ये बहुत जरूरी है। और वो आनंद ऐसा है कि जब वो आनंद हम अनुभव करते हैं, तो फिर हमें और कोई बात खींच नहीं सकती है। जो गीत हम गाते हैं ना कि तुम्हारे प्यार और सुख के सामने संसार का सुख फीका है, तो सचमुच वो अनुभूति हमें होने लगती। अगर बाबा को याद करते करते मन कहीं और देखता है, मन कोई और बात सोचता है, कहीं और जाने में इंटरेस्टेड रहता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा अट्रैक्शन बाबा के प्रति कम है। उस व्यक्ति, वो सेवा या उस प्रवृत्ति के प्रति हमारी ज्यादा रुचि है, इसलिए बाबा के पास बैठे हुए भी मन उन बातों के लिए खींच रहा है। इसलिए फिर हमें अपने आप को सावधान करके अपने आप को फिर से ट्रैक पर लाना चाहिए। तो आज अब एक घंटा हम अपने स्वरूप का अनुभव करेंगे जो बाबा ने हमें बताए हैं। सारे चक्र के अंदर हमारे अपने ही वो स्वरूप है और उसकी एक्सरसाइज करने के लिए बाबा हमेशा हमें कहते हैं, ताकि हम अपने को कभी भी साधारण स्थिति में न ले आए, क्योंकि आत्मा का नेचर है, लेटेस्ट 63 जन्मों का अभ्यास है साधारण स्थिति में रहने का। इसलिए आपका भी अनुभव होगा कि हम अभ्यास के लिए कोई स्वमान लेते तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी वापस हम अपनी साधारण स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए फिर अपने को ये याद कराना, अपने ऊंचे रोल को, अपने ऊंचे पार्ट को, अपने ऊंचे स्वमान को, ये जरूरी, ताकि हम अपनी ऊंची आत्मा स्थिति में होंगे तो ऑटोमेटिक बाबा से हम जुड़े रहेंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एक दो से थोड़ा खुल करके बैठ, डिटैच होके अपना डायरी, पेन, पर्स, जो कुछ है वो एक तरफ रख दीजिए। 5 अभ्यास के साथ हम अपनी शारीरिक स्थिति भी चेंज करेंगे, ये बड़ा संगठन है, इसलिए हम ग्रुप नहीं बनाएंगे, परंतु हरेक खुद अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। किस रीति से? पहला अभ्यास, हम जिस स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में बैठ करके करेंगे। फिर दूसरी एक्सरसाइज के समय आप राइट साइड टर्न होंगे, इस तरफ, उस तरफ अपने फेस करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में फिर राइट साइड घूम के, अभी आप बैठे हैं तो पीछे का साइड आप चेंज होंगे। फोर्थ एक्सरसाइज फिर राइट साइड घूम के इस तरफ आपका फेस होगा। और पांचवी एक्सरसाइज में वापस हम इसी स्थिति में बैठेंगे। लेकिन एक विशेष अटेंशन इसमें हमें रखना है, और ये आप एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि शरीर की स्थिति हमें बहुत धीरे से चेंज करनी है। जब हम अपनी पोजीशन चेंज करें तो हमें अपनी योग की स्थिति से नीचे नहीं आना। कई बार क्या होता है कि शरीर की हलचल के साथ हम मन को भी हलचल में ले आते, लेकिन वास्तव में ये आप प्रैक्टिस करो कि शरीर की पोजीशन बदलते हुए भी मन की स्थिति हम अचल रखें। शरीर से हम फास्ट चल रहे हो लेकिन मन साइलेंस की स्थिति में। ऐसे नहीं कि फास्ट चलते हैं तो मन भी फास्ट हो जाए, नीचे आ जाए, साधारण हो जाए, नहीं। योगी माना ये नहीं कि धीरे चले, आवश्यकता के अनुसार हमें फास्ट भी चलना पड़ता है, लेकिन मन वही साइलेंस की स्थिति में। तो यहाँ जब आप टर्न होंगे हर एक्सरसाइज में, तो मन से नीचे नहीं आना, मन उसी दिव्य अनुभूति में रहे और धीरे से शरीर की पोजीशन को चेंज कर, आसपास के वातावरण से और व्यक्तियों से एक डिटैच ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित हो जाए। मन के विस्तार को समेट ले, देह भान से न्यारे हो जाए, अंतर्मुखी बनकर अपने आंतरिक स्वरूप को देखे, अपने अनादि असली आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। ये मेरा मूल स्वरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य आत्मस्वरूप। अपने असली स्वरूप में मैं शुद्ध और शांत स्वरूप आत्मा हूं। परम धाम निवासी अशरीरी निराकार विदेही आत्मा हूं। खंड लाल ज्योतिर्मय देश में मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये मेरा सत्य चैतन्य स्वरूप है। अविनाशी शाश्वत स्वरूप है। मैं आत्मा शांत और स्थिर शुद्ध और पवित्र मैं अपनी धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ स्थिति में हूं। आधा कल्प की ये मेरी देवताई प्रारब्ध है। बेहद के वर्षे का अधिकारी विश्व का मालिक स्वरूप है मेरा। दिव्यलोक को चारों ओर निहार रही हूं। मानव जीवन का ये सर्वोत्तम देव पद है। इसी देवताई स्वरूप का यादगार। अब मैं द्वापर में देख रही हूँ मेरा पूज्य स्वरूप। राइट साइड घूम जाइए, ये है भक्ति में यादगार पूज्य स्वरूप। भक्तों की अपार भीड़ एक सेकेंड के दर्शन के लिए आतुर है। मेरा यादगार पूज्य स्वरूप उन्हें दुखों से मुक्त कर देता है। एक सेकेंड की झलक उन्हें सर्व प्राप्ति की अनुभूति कराता है। यही वो समय है मेरे पूज्य स्वरूप का साक्षात्कार। की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। कितने सम्मान के साथ विधि पूर्वक ये यादगारी बनाई हुई है। ये मेरा ही तो यादगार है। आधा कल्प की निर्विघ्न अचल अडूर दिव्य स्वरूप की ये यादगार प्रतिमाएं दिव्य अनुभव कराते हैं।
कुछ स्वरूप की यादगारी। मुझे अपनी पवित्र पर्सनालिटी की याद दिलाते हैं। मैं इन यादगारों की तरह अपनी पवित्र दिव्य रॉयल स्थिति में ऐसी अचल स्थिर बन जाऊं साक्षात्कार मूर्त बन जाऊं। ये कुछ स्वरूप कल्प पहले किए हुए विजयी पुरुषार्थ की मुझे याद दिलाते हैं। ये मेरा और विश्व के दैवी पूर्वजों का यादगार स्वरूप है। और अब ये है मेरा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। धीरे से घूम जाइए। ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख से मुझे एडॉप्ट किया है। सारे चक्र में ये मेरा सर्वोत्तम पार्ट है। ये मेरा अलौकिक मर्जी वा जन्म है। मैं अध्यात्म की ऊंची चोटी पर स्थित उच्च कोटि की ब्राह्मण आत्मा हूँ। इस ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ब्रह्मचारी बनने से है। और इस ब्राह्मण जीवन का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मचारी बनना है। आत्मस्मृति का तिलक मुझे लगा हुआ है। पवित्रता कमल पुष्प मेरा आसन है। ये वो दिव्य जीवन है जहाँ मन सदा शिव बाबा की महिमा गाता है। और ये मुख ज्ञान रत्नों का दान करता है। ये मेरा विश्व कल्याण के लिए खुदाई खिदमत के लिए जीवन है। मैं ब्रह्मा की भुजा उनका निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ। शरीर से साधारण दिखते हुए मैं आत्मा की असाधारण अलौकिक स्थिति में हूँ। इस ब्राह्मण जीवन में मेरा सर्वस्व एक शिव बाबा है, बाकी सब कुछ निमित्त मात्र है। स्वयं भगवान, मेरा साथी और सारथी है। वो माध्यम हूँ जो आत्माओं को भगवान से मिलाने के लिए निमित्त ईश्वरीय जन्म में परमात्मा याद के सुख के अनुभव में मैं समाई हुई हूँ। उस एक की याद में मग्न हो जाना यही मेरा लक्ष्य है। संयम और नियम इस ब्राह्मण जीवन की शोभा है। जीवन का सही लक्ष्य, जीने का सही मार्ग मुझे मिल गया है। अब मुझे न तन से भटकना है, न मन से भटकना है। सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने वाला ये मेरा वैल्यूएबल हीरे तुल्य स्वरूप है। इसी ब्राह्मण जीवन में चलते चलते अब मुझे पहुंचना है फरिश्तेपन की मंजिल पर। अब घूम जाइए बाप दादा की ओर। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना ये मेरी फाइनल मंजिल है। लाइट और माइंड से भरपूर ये मेरा न्यारा और प्यारा आखिरी स्वरूप है। मैं स्वयं एक लाइट हूं, लाइट की दुनिया में लाइट के कार्ब में चमकीले सूक्ष्म वतन में चमकीली फरिश्ता ड्रेस में मैं चैतन्य लाइट हाउस अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के संग अव्यक्त फरिश्तों की महफिल में मैं अपने को इजी और लाइट महसूस कर रही हूँ। मैं वतन से ही विश्व को देख रही हूँ। एक फरिश्ता होने के नाते विश्व की आत्माओं को दुखों से मुक्त करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने इस अव्यक्त स्वरूप से विश्व का भ्रमण कर रही हूँ। जैसे ही मैं उन आत्माओं को देखती हूँ, वे आत्माएं शक्तिशाली बनने लगती हैं। ये मेरी पारदर्शी संपूर्ण स्वच्छ उड़ती कला की स्थिति है। मैं सूक्ष्मकारी अव्यक्त फरिश्ता हूँ, न्यारा निर्लिप्त निर्मल हमें सूक्ष्म वतन से मूल वतन जाना है और नई दुनिया में वापस आना है।